खुश हैं माताएं सेवाओं में, खुश हैं बाबा से मिलन हुआ, हुआ या नहीं हुआ भाइयों का, किस किस को संशय हुआ कि बाबा कहाँ चले गए थे बीच में, बताओ किसी को हुआ हो तो बोलो, कईयों को हो गया है। एक माता ने फोन किया बेचारी अपने पति को लेके बैठी कि भगवान आएगा, टीवी पे आता है ना संतों में, थोड़ा थोड़ा आता है संपर्क में, वो परेशान हो गया तुम्हारा भगवान कैसा है, कभी धीरे बोलता है कभी तेज बोलता है, उसे पता तो कुछ चला नहीं। बाबा को संपूर्ण रूप से जानना, उसके कार्य करने की विधि को संपूर्ण रूप से समझना, ये भी गुह्य बात है। और ये संभव है कि आगे चल के बहुतों के मन में संशय उठे, अभी भी उठे हैं। एक होता है संशय उठा फिर ठीक हो गया, वो भी एक स्थिति है। एक है संशय उठा तो उठ ही गया, लेकिन पहली स्थिति है बाबा को संपूर्ण रूप से पहचानना, संशय नहीं। जिस तरह भी वो कार्य कर रहा है, जब हमने उसे जान लिया एक बार तो उसका कार्य संपूर्ण सत्य परफेक्ट। हो सकता है बाबा को कहीं जाना पड़ा, कई बार हुआ है हमने देखा, एक बार बाबा शिवरात्रि पे आए, बहुत समय पहले की बात है सुरेश भाई, बहुत समय, शायद 35, 36 या 40 साल हो गए, नहीं बहुत पहले, थोड़ा ही छोटा यज्ञ था, बाबा शिवरात्रि पे प्राय आते नहीं थे, उस दिन बाबा को बुलाया गया, थोड़ी देर बाबा रहे थे और बाबा ने कहा कोई भक्त बहुत प्यार से याद कर रहे हैं बाबा को, वहाँ जाना है इसलिए बाबा सबसे छुट्टी लेते हैं। पहले ये भोग आदि खिलाने का सिस्टम नहीं था और बाबा ने एक मिनट दृष्टि दी और गए, ऐसा हमने कई बार देखा। साकार में बाबा थे, बीच बीच में चले जाते थे और फिर क्लियर करते थे, बहुत कोई याद कर रहा था, कभी बच्चे का नाम बच्चे के लिए कहते थे, कोई बच्चा बहुत बंधन में था, कोई माता याद कर रही थी, उसके पास जाना हुआ। तो बाबा की एक कार्य करने की विधि अलग अलग है। बाबा की पालना फिर से प्रारंभ हो गई और इस पालना का सुख बहुत जबरदस्त है। अब आगे से जब बाबा आएंगे तो सभी ख्याल रखेंगे कि जिस दिन बाबा के आने का होता है सवेरे से ही बाबा अपने वाइब्रेशंस सभी बच्चों को देने लगते हैं, अनेक आत्माओं का प्यार उसको खींचने लगता है उस दिन सवेरे से ही। तो बाबा का भी जैसे संपूर्ण अटेंशन और तरफ से हट के बच्चों की ओर आ जाता है, वो दिन वरदान लेने का भी होता है, वो दिन समस्याएं समाप्त करने के लिए बाबा से शक्तियां लेने का भी होता है। तो उस दिन का हमेशा ही पूरा लाभ उठाएंगे, न जाने कितने दिन और हैं बाबा के आने के, ये तो कोई नहीं जानता, पर बाबा के आने का समय तो कम हो ही गया और ये कम ही रहेगा, ये बहुत तो बढ़ेगा नहीं, तो हम इसका पूरा पूरा फायदा उठाते रहे। बाबा ने कभी बता दिया है धीरे धीरे पाठ चेंज होते होते कहाँ पहुंचेगा कि बाबा आएंगे, दृष्टि देंगे और जाएंगे, वो एंड होगा, उससे पहले ये मुरली चलना धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और फिर ये पूरी तरह समाप्त होके केवल दृष्टि देंगे। तो इसमें क्या गुह्य गति है कि बाबा अपने को छुपाता जाएगा और कुछ महान आत्माओं को वर्ल्ड स्टेज पर लाता जाएगा, उनके द्वारा विश्व का कल्याण होगा। जो इष्ट देव देवियां हैं, जो पूजनीय हैं, जो पूज्य बन जाएंगे, जो पूर्वज हैं, उनके वाइब्रेशंस के द्वारा बाबा विश्व का कल्याण कराएगा, क्योंकि बाबा ने हम सबकी पालना बहुत कर दी है, बहुत पालना हुई है। मैं तो याद करता हूँ कभी कभी, डॉक्टर जानते होंगे, सुरेश भाई भी जानते होंगे, बाबा कितना कितना समय रहे, कितनी हरेक को पालना दी। मधुबन वालों से एक बार मिले, प्रोग्राम बना, मुझे पहली घटना याद रहती है 72 में मधुबन के भाइयों की भर्ती हुई, 15 थे हम, और प्रोग्राम बना के बाबा एक एक से मिले, किसी को अपने मन की बात कहनी है बाबा को कहे, बाबा ने स्वीकार किया और पहली बार बाबा सवेरे 3 बजे तक रहे। और जिसको जितना मिलना है, जिसको जो कुछ बाबा को सुनाना है और पूछना है, वो पूछ सकते थे, हमने भी उसका पूरा फायदा उठाया था, और उसके बाद कुछ पूछना बाकी नहीं बचा था। बहुत अच्छी वो मुलाकात थी। एक बार फिर ओम शांति भवन बनने के बाद मधुबन निवासियों को मिलने का मौका मिला, क्योंकि विदेशियों को बाबा मिलते थे, एक एक को 3-3 मिनट देते थे, तो मधुबन वालों को ईर्ष्या होती थी, इनकी बड़ी पालना हो रही है, हमें बाबा ऐसे ही 10 टोली दे के चला देता है। तो बाबा को ये बात पहुंचाई गई और बाबा ने कहा अच्छा सबसे मिलेंगे, तो सब मधुबन वालों से भी बाबा लंबा लंबा समय मिले। पहला नंबर मेरा ही था, बहुत अच्छी बातें कही, किसी को 3 मिनट, किसी को 4 मिनट, किसी को 5 मिनट, बहुत अच्छी तरह बाबा मिले। जब बहनों का टर्न आया तो देर बहुत हो गई थी, बहनें नहीं मिल पाई, फिर वो हुआ ही नहीं प्रोग्राम। तो एक हंसी की बात सुनाऊं और बहुत अच्छी सीखने की भी है। एक और समय पर एक बहन बाबा के सामने आई मिलने। एक बार और ऐसा ही प्रोग्राम बना था, तो बहनों का भी टर्न हुआ, थोड़ी बहनें थी, तो एक बहन बाबा के सामने आई। वो बहन पहले से ही जरा तेज पराग थी, लोग उसको फ्रीडम फाइटर कहते थे। तो जब वो बाबा के सामने आई, बाबा अच्छी तरह मिल रहे थे, तो हम सब अलर्ट हो गए कि बाबा इसे क्या कहेगा, होता है ना, भाई बाबा इसे कोई शिक्षा देगा या क्या कहेगा बाबा इसे। और हम सब हैरान थे ये सोचकर, कोई निराश भी हुए कि बाबा ने उसकी बड़ी महिमा की और कुछ बहुत अच्छी बात कही। लेकिन हमारी तो समझ में आ गया कि वो तो क्या है, प्यार का सागर है, उसे सबको प्यार ही देना है। जैसे माँ बाप अपने हर बच्चे को प्यार देते हैं ना, कोई फेल होने वाला भी हो, लेकिन माँ बाप की दृष्टि, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं अलग ही होती है ना, सब जानती है ना माताएं। तो बाबा तो बाबा है, कौन अपना कितना भाग्य ले रहे हैं, किसका पुरुषार्थ क्या है, वो बाबा रोज मुरलियों में भी अच्छी बातें सिखा रहे हैं, और उसके जिम्मेदार फिर हर आत्मा स्वयं है। लेकिन बाबा तो अपने परमात्म स्वरूप में स्थिर है सदा, उसके मन में किसी के लिए न घृणा भाव होती, न ये होता मैं इनको इतना पढ़ाया और ये कुछ नहीं कर रहे। हमने देखा जब ओम शांति भवन में बाबा विदेशियों को 12-12 घंटे, 14-14 घंटे और एक दिन 16 घंटे भी मिले सारी रात, अब सोचो, और वो बाबा को छोड़कर चले गए, कैसा लगेगा। जिनकी बहुत पालना की, जिनको हर तरह से संतुष्ट किया, जिनके रात, जिनके लिए रथ को भी कष्ट दिया, आप सोचो 16 घंटे, शाम को 6:30 आए, सवेरे 10:30 गए, सवेरे 10:30 दिन के, और शाम को 6:30 आके 7:30 बजे तक सवेरे, तो कितनी बार रहे, उस दिन मुरली भी नहीं होती थी, सीधा सब लोग योग करके बाबा के पास आ जाते थे, उसी टाइम वहीं योग हुआ बाबा के सामने और गए। ऐसी पालना के बाद भी उसके प्रिय बच्चे उसे छोड़ के चले गए और कई गाली भी देने लगे, फिर भी वो अपने उस स्वरूप में स्थित है। उसकी भावनाओं में कोई अंतर नहीं आता। हमें भी यही उससे सीखना है। ये हमारी सर्वोच्च स्थिति है कि सब कुछ देखते सहन करते हम अपनी सर्वोच्च भावनाओं को छोड़े नहीं, अपने क्षमा भाव को समाप्त न करें, अपने प्यार देने का जो हमारा कर्तव्य है उसको भूले नहीं, तो इससे बहुत अच्छा होगा। तो फिर से बाबा हमारी पालना करेंगे। पालना तो रोज होती है। सबसे सुंदर पालना कौन सी है? मुरली, जिसमें बाबा हमसे बातें करता है। लगता है सबको कि बातें करता है या भाषण करता है? बाप अपने बच्चों के आगे भाषण थोड़ा ही किया करता है। कभी सुना है कि बच्चों के आगे भाषण कर रहा था इनका पापा? बातें करता है, रुधियान करता है, कुछ याद दिलाता है, हमें जगाता है, हमारी चेतना सो जाती है, हम ढीले होते हैं, हम कुछ कुछ और सोचते हैं, वो हमें जगाता है। तो इस मुरली में बाबा ने हम सबको हमारे महान भाग्य की याद दिलाई। हाथों में क्या देखा इंद्रप्रताप? नई बात थी ना ये, ऐसा पहले कभी नहीं कहा था। हाथों में, ज्ञान तो बुद्धि में होता है ना, पर भगवान ने चिंतन का काम दे दिया। हाथों में भी देखाएं है ना, और देने का काम हाथों से होता है। हाथ भी भरपूर हैं, चाहे ज्ञान से भी चाहे सर्व खजानों से भी। बाबा मस्तक में क्या देखता है हमेशा? चमक, लाइट। और ये लाइट किस किस से मिलती है बोलो? पीछे वाले जवाब दें भाइयों में। लाइट पहली योग से, दूसरी पीछे वाले बोलेंगे सन्नी, लाइट पवित्रता से, तीसरी नहीं शुभ भावना नहीं, तीसरी नहीं ज्ञान से। ज्ञान भी प्रकाश है, संसार में तो केवल ज्ञान को ही प्रकाश माना जाता है। और चौथी नहीं लाइट रहने से, हल्के रहेंगे तो मन के संकल्प वेस्ट नहीं होंगे और श्रेष्ठ संकल्पों का प्रकाश यहाँ से चमकता रहेगा। भाग्य भी मस्तक से ही चमकता है, खुशी भी मस्तक से ही चमकती है, पूरे चेहरे से। बाबा ने हम सबको कौन सा टाइटल दिया? संतुष्ट मणि। सभी को ध्यान रखना है, टोटल द्वापर युग से और कलयुग तक या पूरे चक्र में भगवान को कौन प्रिय लगते हैं? पहली, पांच पॉइंट निकाल लें। पहली, जो संतुष्ट हैं। दूसरा बोलो, नहीं द्वापर से मैंने बात की इसलिए वहां ज्ञान नहीं होता। दूसरा हर्षा बहन, जो रहम दिल और दयावान, इसी में सहानुभूति, दया, दूसरों को मदद करने वाले, रहम करने वाले, दया करने वाले, मदद करने वाले। तीसरा बाबा की मुरलियों में बहुत आ चुका है, जो दूसरों को सुख देते हैं वो बाबा को बहुत प्रिय हैं। लौकिक में भी बच्चे एक दूसरे को सुख दें तो माँ बाप को बहुत प्रिय लगते हैं। और चौथी बात, जो केवल हम सबके लिए, पवित्र आत्माएं परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय हैं। और पांचवा योगी, जो योग युक्त हैं, जिन्होंने अपने चित्त को निर्मल कर दिया है, जिन्होंने मन के सभी मैल निकाल दिए हैं, अपनी भावनाओं को शुद्ध कर लिया है, वो बाबा को बहुत प्रिय हैं। हम सभी उसके प्रिय बच्चे हैं, संतुष्ट मणि हैं। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। हमें संतुष्ट रहना है। संतुष्ट कर भी वही सकते हैं जो संतुष्ट रहते हों। पुरुषार्थ में संतुष्ट, सबसे बड़ी संतुष्टता कौन सी है? पुरुषार्थ की संतुष्टता। बहुत कुछ हमारे पास हो लेकिन हमारा प्रसाद ढीला हो संतुष्ट होंगे? कोई कितना भी अच्छा सब कुछ प्राप्त किया हो लेकिन सवेरे न उठते हो तो आत्मा में एक खालीपन सा रहेगा ही, और सवेरे उठे थोड़ा भी योग लग जाए 10 मिनट भी तो तृप्ति होती है, एक आत्मसंतुष्टि होती है, प्रभु मिलन होता है और अपना पुरुषार्थ भी बहुत अच्छा। एक भाई का आज फोन आया, मैं संतुष्ट नहीं रहता। उसने प्रश्न ये पूछा, कुमार है, मैं संतुष्ट नहीं रहता। मैंने पूछा योग कितना लगाते हो, कहा आधा घंटा रोज हो जाता है। टीचर है, लौकिक टीचर, अपना कोचिंग सेंटर खोला। फिर डिटेल मैंने बात की उससे, भाई कुमारों को तो जीवन में संतुष्ट होना ही चाहिए, नहीं तो कुमारों के लिए माया बहुत है, कुमार और कुमारियों के लिए। अगर उनमें आत्मसंतुष्टि नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं संतुष्टि के लिए जाएंगे जरूर। परमात्म प्यार की अनुभूति नहीं तो कहीं ना कहीं मनुष्यों के प्यार की उन्हें तलाश होगी और वो आकर्षित होकर चले जाएंगे। बहुत लोगों के समाचार मिलते हैं, रोज कम से कम एक फोन मेरे पास ऐसा अवश्य आता है, मेरा लड़का बहुत अच्छा ज्ञान में चलता था, 5 बार बाबा से मिला, आज भी था एक माता का, अब ज्ञान छोड़ दिया, बुरे संग में रहता है, मेरी सुनता नहीं, कहता है ज्ञान तुम बूढ़ों का काम है, हमें अभी दुनिया देखनी है, मैं क्या करूं, मुझे उसकी बहुत चिंता है। मैं तो उत्तर इतना ही दिया, तुम परेशान रहोगी तो उसकी स्थिति और बिगड़ेगी। ठीक बात है ना? इसलिए अपनी स्थिति को परेशानी में न डालेंगे तो बच्चों पर अच्छे वाइब्रेशंस जाएंगे। ये सभी माताओं को विशेष रूप से ख्याल रखना है। बच्चों के कारण अगर आपने अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो आप बच्चों का कल्याण नहीं कर पाएंगे। समस्याएं तो हैं, हर माँ बाप चाहते हैं उनके बच्चे चरित्रवान हो, परंतु आजकल संसार में ये ड्रग्स लेने की, नशा लेने की युवकों में, विदेशियों से आ गई है ये लहर, बहुत चल रही है। इससे माँ बाप निश्चित रूप से परेशान होते हैं, लेकिन परेशानी से तो वो छोड़ेंगे नहीं ना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से आपको उनका कल्याण करना है। अपनी स्थिति में और बल भरो, अपने योग को और पावरफुल करो। कुछ माताएं बिल्कुल डाउन कर देती हैं अपने को, सवेरे नहीं उठती, चिंताएं बहुत हैं बच्चे की, 6 बजे उठती हूं मैं तो, बच्चे की बहुत चिंता है। लेकिन होगा कुछ, बच्चे का भी भाग्य बिगड़ गया तो अपना भी बिगड़ गया। इसमें समझें, समझदारी से सभी काम लेंगे, संतुष्ट आत्मा। और बाबा ने जो बहुत बड़ा हमें काम दे दिया, बताओ वो स्थिति बताई और काम भी दे दिया। तीसरी बात थी, बोलो याद है सबको, एक ही लाइन तो बोली थी बस, अर्जुन भाई हाँ, और भी आगे बढ़ो, ये बहुत अच्छा बोला था, हलचल में अचल। और काम दे दिया, दूसरों की हलचल को भी तुम्हें समाप्त करना है। दूसरों की हलचल को अचल वो बना सकेंगे जो लंबा काल स्वयं अचल अडोल रहेंगे। तो ये समय की बहुत गुह्य चेतावनी बाबा एक लाइन में दे गए। हलचल का समय तेजी से आता जा रहा है, मैं तो ऐसा कहूंगा आ गया है। हर परिवार में हलचल है। एक डॉक्टर मिले, अभी मैं भट्टी में था, उसने कहा जितने पेशेंट आ रहे हैं डॉक्टर साहब, ज्यादातर शुगर के हैं, महामारी बनती जा रही है, मानसिक रोगी बढ़ते जा रहे हैं, ये हलचल भी संसार में होती जा रही। अभी तो दवाइयां हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब दवाइयां नहीं होंगी। आएगा या नहीं ऐसा समय? ये बड़ा भयानक समय आएगा। आप सोच लें, जरा सी कल्पना करें, भूकंप होने लगे, सड़कें टूट गई, रेलवे लाइन भी उखड़ गई, चाहे बरसात से चाहे भूकंप से, ट्रक चलना ट्रेन चलना बंद हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम बंद, माल इधर से उधर आएगा ही नहीं, नीचे से ऊपर भी संभव है सब्जियां भी ना आए, हमारे पास पालनपुर से दूध आता है वो आए ही नहीं, सड़कें टूट जाएं, ये सब होगा। इसमें दूध के बिना मनुष्य जिएगा, सब्जियों के बिना भी जिएगा, लेकिन दवाइयों के बिना, डॉक्टर साहब बड़ा मुश्किल काम है। दवाई तो ड्राई फ्रूट है, बाबा ने उस दिन कह दिया ना संडे को, इनको तो लेना है। तो ऐसे में हमें अपनी ही ईश्वरीय शक्तियों का प्रयोग करना होगा। साकार में बाबा थे तो ये सबको बहुत सिखाते थे, यज्ञ में दवाई होती ही नहीं, ना कोई डॉक्टर था ही नहीं कुछ, तो हमेशा कहते थे योग बल से अपने को ठीक करो। हर माता डॉक्टर होती थी ना भारत में, पता है ना माताओं को, किचन डॉक्टर, किचन में बहुत सारी चीजें हैं जो दवाई हैं, उनका ही बना के बच्चों को भी ठीक रखती थी, सब बीमारियों का इलाज करते थे। अब सब दवाइयों के अधीन होते जा रहे हैं और ये अधीनता छूटेगी, ये परीक्षा के रूप में भी हमारे सामने आएगी और ये विशाल हलचल बनकर भी संसार को बहुत परेशान करेगी। अभी आप सोच लो, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है या शुगर है, उसको दवाई ना मिले तो उसका तो बहुत बढ़ जाएगा, और दवाई नहीं है ये चिंता और बढ़ा देगी उसका। इसलिए एक बात तो मैं आपको कहूंगा कि दवाई जब खाएं तो दवाई देख लाल पीली रंगीन होती है ना, लाल पीली काली हरी, उन्हें देखकर मन में परेशानी के संकल्प ना आने दें, ओ दवाइयां इतनी नुकसान करेंगी, खा रहे हैं ठीक होने के लिए संकल्प कर रहे हैं साइड इफेक्ट करेंगी, बड़ी खतरनाक है ये अंग्रेजी दवाई, पर खानी तो पड़ेगी, क्या होगा इसका इफेक्ट होगा। इसलिए सभी अपने संकल्पों को ठीक करें। परसों जब बाबा की मुरली चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि देखो बाबा मन को पॉजिटिव करने की कितनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, ये तो देह को एनर्जी देने का ड्राई फ्रूट है, फ्रेश फ्रूट है, खाओ आनंद पूर्वक। बाबा ये भी कह सकता था नहीं खाओ, पर समय आ गया ना, एक समय था यज्ञ में कुछ नहीं था तो कहा योग बल से ठीक करो। अब दवाइयां हैं तो योग बल का ध्यान किसी को नहीं है, तो उन्हें प्यार से खाओ, अच्छी भावनाओं से खाओ, हाथ पे रखो, दृष्टि दो, संकल्प करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये दवाई खाते ही मेरा ये रोग ठीक हो जाए, ऐसे खाओ, पूरी अच्छी भावना से अच्छे विश्वास के साथ। भोजन भी जब करें सभी बहुत अच्छा कर लें, मैंने भी बहुत अच्छा शुरू किया है कुछ दिन से, ये भोजन अमृत है, ब्रह्मा भोजन अमृत, जीवन को अमृत तुल्य बनाने वाला। बाबा को भी थैंक्स दे दो, प्रकृति को भी थैंक्स दे दो, दोनों ने हमें ये भोजन दिया है, सुखी हो जाएं सब। ऐसे भोजन खाएंगे तो भोजन का इफेक्ट भी बहुत अच्छा होगा। अगर थाली आते ही सोच लिया क्या बनाया है, रंग भी अच्छा नहीं, मिर्ची भी कम, बैंगन ही बना दिया आज तो, कैसे खाएं इन्हें, तो नुकसान करेगा। मैंने सुनाया था ना, यही क्लास थी, सिंधी ग्रुप आया था पीछे उल्लास नगर का, सारे सेठ लोग थे, तो मैंने क्लास कराया था, ये बताया था मैंने उन्हें भोजन को अमृत समझना। तो एक अपना भाई जो उन्हें लाया था बहुत साल से ज्ञान में है, यहाँ पे उनका ग्रुप बैठा था, तो सुनाया ग्रुप के सामने कि दही खाते ही मेरा हाल बिगड़ जाता था, लेकिन आज बना था रायता, बड़ा टेस्टी था, सामने आते ही मैंने संकल्प किया ये रायता मेरे लिए अमृत है, खाया, कहा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं तो छींक और कोल शुरू, बहना नाक शुरू, दही खाते ही एक चम्मच खाया शुरू। और फिर अभी आया था नीचे बाबा से मिलने, मैंने कहा दही का क्या प्रोग्राम है, कहा रोज खा रहा हूँ, कुछ नहीं होता। अब अभी आया था सर, कल ही गए उनकी पार्टी। तो हमारे संकल्पों का बहुत बड़ा प्रभाव प्रकृति पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी स्थिति पर पड़ता है। सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें, हम कोशिश करके अपने संकल्पों को कमजोर न करें। सब कुछ अच्छा होगा, ये संकल्प अपने चित्त में समा दें तो अच्छा ही होता रहेगा। सब कुछ अच्छा होगा, पसंद है, कहीं ऐसा न हो जाए, ये न हो जाए, वो न हो जाए। छोटी छोटी बातों में आप ध्यान दें। आप अपने घर में हैं, आप बहुत बिजी हैं, आपको चार काम करने हैं, टाइम आपके पास थोड़ा है, मेहमान का भी फोन आ गया, मैं आ रहा हूँ, अब आपके मन में एक टेंशन जैसी है, ये सब कैसे होगा एक साथ। लेकिन आप संकल्प कर दो, सब कुछ ठीक ठाक पूरा हो जाएगा। और आप इसका परिणाम देखना, मैं रोज करता हूँ ये, मुझे इसके बहुत अच्छे अनुभव होते हैं। कई बार गलती से एक ही समय तीन ग्रुप को टाइम दे दिया जाता है। मैं दे भी देता हूँ कि आगे पीछे लोग आते हैं, इंडिया में तो टाइम की वैल्यू कम होती है ना, 10 बजे का तो सोचते हैं चलेंगे, माताओं को तो घड़ी भी कम होती है, ठीक है चलेंगे। मैं सोचता हूँ एक ही साथ तीन ग्रुप को टाइम दे दिया, मैं संकल्प करता हूँ ये 15-15 मिनट के अंतर से आए, और वैसा ही होता है। कोई कहेगा भाई हम तो फलाने से मिलने चले गए, लेट आए, थोड़े आपको दिक्कत तो नहीं होगी। मैंने कहा नहीं नहीं ठीक है, बहुत अच्छे टाइम पे आए हो। तीसरा कहेगा अरे दादी से मिलने चले गए थे, हमें देर हो गई भाई, अब मिल सकते हैं। मैंने कहा यही राइट टाइम है आपके मिलने का, आ जाओ। ये मुझे नीचे रोज रोज अनुभव होते रहते हैं, तो मैंने तो पक्का कर दिया हर क्षण अच्छा ही होगा, नो टेंशन। ये जो शुगर आदि भी है ना, ये सब टेंशन से ज्यादा होती है। मुझे भी हुई थी पिछले सीजन में, और मैंने नोट किया मुझे क्यों हुई, मुझे काम काज की टेंशन ज्यादा रही, फोन बहुत, पार्टियों का मिलना बहुत, और किचन का काम भी नीचे बहुत, और भी कुछ कुछ, तो मैं सबको करने का सोच लिया था। तब से मैंने एक संकल्प किया कि सब कुछ नहीं करना है, कुछ छोड़ना भी है। तो जब पार्टियां मिलती हैं मैं अपना फोन बंद कर लेता हूँ। मैंने कहा एक ही काम करेंगे, रिलैक्स, वो दोनों काम करने हैं वो नहीं, और भी कुछ काम थोड़े छोड़ दिए तो बहुत अच्छा होने लगा। जीवन को अपने सहज भाव से जीना, ये भी अपने हाथ में है। फिर उतने ही काम हम कर लेते हैं आगे पीछे, दोबारा फोन आ जाते हैं, सब ठीक रहता है। लेकिन अपने मन को विचलित न करना, अपने चित्त को शांत करना, ये कला हमें सीखनी है। जितना मन शांत होगा, जितना प्रसन्न होगा, जितना सभी के लिए प्रेम होगा, हमारी भावनाएं सुंदर होंगी, उतना ही क्या होगा, हम निरोग रहेंगे। आजकल सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई है स्वास्थ्य को अच्छा रखने की। जिनका अच्छा है वो तो बहुत भाग्यवान है, लेकिन आज परिवारों में ये समस्या बहुत बढ़ रही है। तो हम सभी ध्यान देंगे, अब लंबा काल हलचल से मुक्त रहना है, तब हम आने वाले समय में सबकी हलचल को मिटाने वाले होंगे। कुछ अपने सिद्धांत बना लें आप, 5, जिनके आधार से अपने को हलचल से मुक्त रखेंगे। जैसे एक सिद्धांत, जो कुछ हो रहा है वो सब क्या है, ड्रामा है, वही ठीक है, चल रहा है खेल, चलने दो इसे, हमारे सोचने से तो ये बदलेगा नहीं। ड्रामा के पैरेलल हम चले, साथ साथ चलेंगे, चित्त शांत होगा, दूसरा सिद्धांत, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमारा वश नहीं चलता, स्वीकार करके हल्के होके आगे चलो, शांत चित्त को करो। माताओं के घर में बच्चे हैं, उतार चढ़ाव होता है उनके जीवन में, उनके जीवन में भी होता है। ज्ञान ले लिया उसके बाद बड़ों के जीवन में भी होता है। एक माता ने फोन किया, अभी अभी ज्ञान में आए हैं, बिजनेस तब से बिल्कुल ठप हो गया है। ये भी उल्टे अनुभव किसी के होते हैं कि ज्ञान में अच्छा चलने के बाद लोस ही लोस होता जा रहा है। अब सब परिवार वाले दबाव डाल रहे हैं, ओम शांति में जाना छोड़ो तब ठीक होगा। तो देखो एक रॉयल परीक्षा आ गई ना, मैंने तो कहा छोड़ के देख लो अगर ठीक होता हो, परंतु ऐसा नहीं होता क्योंकि मनुष्य के कोई विकर्म उसके सामने आ जाते हैं। तो हम सभी ऐसी परिस्थितियों में क्या याद रखेंगे? एक तो बड़े सहज भाव से कि ये बुरे दिन चले जाएंगे, अच्छे दिन आ रहे हैं, विचलित होने की जरूरत नहीं, सभी का भाग्य अपना अपना है, किसी का भाग्य दूसरे के हाथ में नहीं होता, बाबा के हाथ में भी नहीं होता, अपने ही हाथ में होता है। क्योंकि भाग्य और कुछ नहीं है, क्या है? कर्मों का फल, कर्म फल, कर्म फल, यही तो भाग्य है। ये साइकिल चल रहा है, इसी को तो भाग्य कहते हैं। तो उसमें बाबा केवल हमें मदद कर सकता है, हमें गाइड कर सकता है, लेकिन करना हमें होगा। जैसे पतित पावन की बात चल रही थी ना, तो पतित से पावन बाबा ही नहीं बना देता, विधि बताता है, ये करो, जितना तुम करोगे उतने पावन हो जाओगे। तो सभी अपने जीवन के लिए कुछ पांच अच्छे सिद्धांत बनाएं कि हमें छोटी छोटी बातों में जल्दी ही विचलित नहीं होना है, धैर्य चित्त रहना है, थोड़ा साक्षी भाव भी धारण करके रखना है, कुछ चीजों को होने देना है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जीवन में जो होती रहेंगी, उन्हें होने देना है। अभी से सब आदत डालें कि जो कुछ इस सृष्टि पर होगा आगे चलकर, उसे हम साक्षी होकर देखें, क्योंकि ऐसा सब कुछ होगा जो किसी की कल्पनाओं में भी नहीं है। मानो शहर का शहर नीचे धस गया, ऊपर पानी आ गया, ये सब होने वाला है। शहर का शहर अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिर गई, सब दबे हुए चिल्ला रहे हैं, भूतों की आवाज आ रही है, माताएं डर रही हैं, अब क्या होगा, भूत ही भूत हैं यहाँ तो, ये सब देखना पड़ेगा। हुआ था ना भुज में, सुनी कहानी, एक महल था किसी का पुराना, वो किसी ने लिया हुआ था, ज्वेलर ने, किसी ने बड़े सेठ ने, और उसके अंदर ज्वेलरी का उसका काम चलता था, चक्कियां होती है ना हीरो को त्रासने की, तो वो क्या करता था, कुछ गड़बड़ का काम भी था तो उस सबको काम देकर और बाहर ताला लगा के चला जाता था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ, बस वो ताला लगा ही था और भूकंप हुआ, अंदर ही लोग नष्ट हो गए, कोई भाग भी नहीं सका। वहां से रोने चिल्लाने की आवाज आती रहती थी भूतों की। एक व्यक्ति कहानी है, वो चारों ओर चक्कर लगाता रहता था, उसके पागल हो गया था वो, वहां चक्कर ही लगा रहा, फिर पता नहीं कौन उसे ले गया। तो ये सब हमें देखना होगा, सभी को अपने पाप कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा, उसे कोई नहीं बचेगा, चाहे वो मेरे हो या आपके हो, कोई उससे बचेगा नहीं या बचेगा। तो हमें अभी से अपने को तैयार करना है कि जो कुछ इस सृष्टि पर ये अंतिम खेल होगा वो होगा, हम में से ही कुछ आत्माएं बन जाएंगी मास्टर महाकाल। ये सब थोड़ा भारी है, पर इसका अर्थ है बहुत आत्माएं जो शरीरों में उलझ जाएंगी पाप कर्मों के कारण, देह छोड़ना चाहते हुए भी जो देह छोड़ नहीं पाएंगी, उनको अपने वाइब्रेशंस देकर देह से मुक्त करेंगे। उस टाइम ये बहुत बड़ी सेवा होगी कि तड़पती आत्माओं को देह से मुक्त कर देना। तो कुछ समय के लिए शांत हो जाएंगी और ये काम वही कर सकेंगे। दो ही क्वालिटी जो लंबा काल देहे भान से न्यारे रहे हैं और जो लंबा काल अकाल तख्त नशीन रहे हैं। मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन वो मास्टर महाकाल बन जाएंगे तो काल उन्हें भयभीत नहीं करेगा, मृत्यु उन्हें भयभीत नहीं करेगी। मृत्यु उनके लिए ऐसा ही सीन होगा जैसे एक कपड़ा उतारा दूसरा पहन लिया है। तो ऐसी स्थिति सबको बनानी है, अचल अडोल। बनाएंगी माताएं, बनाएंगी? कौन कौन तैयार हैं? हाँ धीरे उठ रहे हैं। खतरे की बात है, बहुत खतरा है इसमें। अविनाश होगा यही सबसे बुरी बात है, न हो तो कितना अच्छा है, हैं? तो अभी से मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ और मेरे साथ कौन है? सर्व शक्तिवान। ये तीनों चीज बहुत बढ़ाते चलें। देखो इन चीजों की आने वाले समय में बहुत ज्यादा आवश्यकता होगी। मैं और मेरा छूटता चले, नहीं तो जबरदस्ती तो छूटना ही है, क्या नहीं छूटेगा? हमने अपनी अलमारी में बहुत माल भर के रखा है, वो छूटेगा या नहीं, या परम धाम तक चलेगा? बाबा ने एक मुरली चलाई थी, मधुबन में थे हम, किसी ने झगड़ा किया था अलमारियों पे, तो बाबा आए थे एक दिन के बाद, तो बाबा ने ही कहा मुरली में छपा हुआ वो, ऑफिस भी छोड़ना पड़ेगा, कुर्सी भी छोड़नी पड़ेगी, खाट भी छोड़नी पड़ेगी, अलमारी भी छोड़ना पड़ेगा, कमरा भी छोड़ना पड़ेगा। बात तो बहुत छोटी है ना, संसार ही छोड़ना है तो ये सब कहाँ जाएंगे। लेकिन कई लोग इनमें उलझ के रह गए हैं ना। अपनी दृष्टि को थोड़ा विशाल बनाएं, हम पूर्वज, विश्व का कल्याण करने वाले, अब देने का समय आ गया है, बड़े बड़े काम हमें करने हैं। तो जिन्हें बड़े काम करने हैं वो छोटी बातों में उलझे नहीं। ये छोटी बातें तो होती रहेंगी, जाती रहेंगी। दादी से मिला बाबा, क्या कहा? ये तो होता रहेगा। हम सोच रहे थे भगवान तो भगवान ही है, मुर्गी अपनी जान से गई उसको फर्क ही नहीं पड़ा। दादी गिर गई, 25 टांके लग गए, मुस्कुरा नहीं पा रही थी दादी, आपने देखा ना, दर्द होता है ना, 25 टांके इधर ब्रेन के पीछे, छोटी बात है, एक सुई भी लग जाए मन उसका हाल बिगड़ा रहता है। और वो तो कितनी ओल्ड एज की दादी, लेकिन कितनी शक्तिशाली है ना, शक्तिशाली हमारी दादी, अचल डोल। लेकिन मुस्कुरा नहीं पा रही थी, मैं देख रहा था कि पीड़ा तो उनको बहुत है। लेकिन बाबा ने क्या कह दिया, ये तो होता ही रहता है जीवन में, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और सुंदर हो गई हो तो कपड़ा डाल लिया था ना सिर पे तो बाबा तो हल्का कर दिया, हंसा भी दिया। तो देखो ये दृष्टि है ना, और इशारे में कह भी दिया, जब नीलू बहन ने पूछा कि दोनों दादियों को ये क्या एक साथ हो गया बाबा, ड्रामा इसका उत्तर देगा। रहस्य है ना हर घटना में, जो कुछ होने जा रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं ना सब। हमने एक बार पहले भी देखा था, दीदी दादी दोनों थी, ओम शांति भवन में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और दोनों ही बीमार, रूम से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं, और कॉन्फ्रेंस हुई। अब भी इतना बड़ा ग्रुप 20,000 का और दोनों दादियों से किसी को मिलना नहीं है, कैसा खेल है ना, वंडरफुल। तो इनमें रहस्य है। देखो दादी जानकी को तो ये संकल्प तेज चल रहा था ना, इतने बाबा के बच्चे आए हैं और मैं कमरे में बंद, हाँ चलता है ना, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, हमारे परिवार की हेड है ना, वो यज्ञ की हेड ही नहीं, हमारे सुंदर परिवार की भी बड़ी है ना, तो उनको संकल्प चलना नेचुरल है। लेकिन ड्रामा के आगे किसी की चाल नहीं चलती है। तो हम सब अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाएं, और जो समय आ रहा है जिसके इशारे बाबा दे रहा है, ये सब इशारे हैं, जब दी दादी बीमार हुई बहुत पहले, ये बात 73 की है, तो बाबा का संदेश आया कि बच्चे जब ढीले हो जाते हैं तो इस तरह घंटी बजानी पड़ती है। प्रभु जी का घंटी बजाने का तरीका भी देखो कि दोनों को बीमार करके बॉम्बे भेज दिया है, घंटी बज रही है कि टाइम कम है, तेज पुरुषार्थ करो। तो बाबा की बातें तो निराली हैं, हम अपनी पालना करते चलें और जो भी आप में से अपने को तैयार करें वो अवश्य करें कि हमें संसार को हलचल में मदद करनी है। ये बहुत बड़ा पुण्य होगा, ये भाग्य निर्माण का बहुत बड़ा आधार होगा, आत्माओं को मदद करना। जब न दवाइयां मदद करेंगी, न सरकार मदद करेगी, न पुलिस मिलिट्री मदद करेगी, न ये प्रकृति के साधन मदद करेंगे, तब हम जब आत्माओं को मदद करेंगे तो ये सबसे बड़ा पुण्य भी होगा। ठीक है ना? तो जो भी इसके लिए अपने को तैयार करना चाहते हैं वो बस दो बातें करेंगे, व्यर्थ से मुक्त और एक महान लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए अच्छे से अच्छा, अधिक से अधिक योग युक्त, ताकि आत्मा में बल आ जाए और हमारे वाइब्रेशंस ऐसे हो जाएं जैसे सूरज निकल जाता है ना, उसका प्रकाश संसार में फैल जाता है। एक एक महान आत्मा, योगी आत्मा, मास्टर ज्ञान सूर्य बन जाएगी और उसके प्रकाश की किरणें आत्माओं को हलचल से मुक्त करेंगे। ओम शांति। अब सभी इसी तरह योग करेंगे। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे।